بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ پارٹ 5 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں بیلی راجپوتا کی ملکہ، جس کی مصنفہ ہیں نمرہ احمد۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 5۔ صفحہ نمبر 43۔ یہ دلہوزی اور شملہ میں پائے جانے والے خاص قسم کے سانپ ہوتے ہیں۔ اصل نام مجھے یاد نہیں، مگر ان کے بارے میں ایک صدیوں پرانا لیجنڈ مشہور ہے کہ یہ مہارانیوں اور مہاراجوں کو نہیں ڈستے اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ میں بیلی راجپوتا کی مہارانی ہوں، یہ مجھے نہیں ڈس سکتا تھا۔ وہ فخر سے مسکراتے ہوئے ہاتھ جھاڑتی اٹھنے لگی۔ چلتی ہوں۔ نہیں رکو، اس نے ہاتھ بڑھا کر مایا کو روکنا چاہا، مگر وہ کھڑی ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موتیوں کی لڑی آ گئی۔ مایا اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہوگا، مجھے جانا ہے، اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ لڑی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی، وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں ڈوب رہا تھا۔ مگر تم مجھے روک کر میری جان خطرے میں ڈال رہے ہو، وہ مسکراتے ہوئے جیسے اس کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ زخمی نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ مجبوری ہے، مگر مایا نے اس کا ہاتھ لڑی سے ہٹایا اور پھر جہاں اس شخص نے ہاتھ رکھا تھا وہاں سے اس نے کھینچ کر ایک جھٹکے سے لڑی کو توڑ دیا۔ چمکتے دمکتے موتی نیچے گرنے لگے۔ جب چند موتی گر گئے تو اس نے وہاں پھر سے گرہ لگا دی۔ وہ نیم کنودگی اور نکاہت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جن پہ تم نے ہاتھ رکھا وہ تمہارے ہوئے، یہ شاہی خاندانوں کا دستور ہوتا ہے۔ مٹی میں گرے وہ سارے موتی اس نے مٹی بھر کر اٹھائے۔ بہت سی مٹی بھی اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں بھر گئی۔ ریت مٹی میں لتھڑے موتی اس نے اس شخص کی جیب میں ڈال دیے اور ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جنگلوں میں بھٹک کر لوگوں کی جان بچانے کا قطن کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی مجھے تم سے کوئی ہمدردی ہے۔ مجھے دلہوزی کا ڈوبتا سورج دیکھنا تھا، جس کے لیے قدرت نے یہ بہانہ بنا دیا۔ ہاں، اوپر جا کر کسی کو نیچے بھیج دوں گی اگر یاد رہا تو، وہ اسی بے نیازی سے کہہ کر مڑی اور واپس اوپر چڑھنے لگی۔ سنو، اس نے پیچھے سے پکارا۔ مایا جیسے بادل ناخواستگاہ رکی۔ تم کون ہو؟ غنودگی میں ڈوبنے سے پہلے وہ بمشکل بول پا رہا تھا۔ درخت کی لکڑی پہ ہاتھ رکھے مایا نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں بیلی راجپوتا کی ملکہ ہوں، اور کچھ نہیں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں ڈوبتے سورج کا عکس جھلملا رہا تھا۔ وہ ابھی تک ایسے ہی نیموا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے غنودگی میں جانے سے قبل بس آخری دفعہ لب کھولے۔ بدر، بدر غازان، اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ مایا نے لاپرواہی سے شانے اچکا اور اپنے جاگرز کی مدد سے واپس اوپر چڑھنے لگی۔ بے دھیانی میں پھر سے اس کی انگلیوں نے پیانو کی کیس کو چھیڑا تھا۔ خاموش فضا میں پھر سے راگ گونج اٹھا۔ وہ چونک کر حال میں واپس آئی۔ قداور آئینے میں اس کا عکس اب بھی وہیں تھا، جیسے کوئی خوبصورت تصویر ہمیشہ کے لیے امر کر دی گئی ہو۔ اس نے سر جھٹکا، ساڑی کا پلو درست کیا اور اسی پرتمکنت انداز میں گردن اونچی اٹھائے باہر چلی آئی۔ برآمدے میں کرسیاں میز کے گرد پیچھی تھیں۔ وہاں ٹھاکر رگھوناتھ اور گوپال بیٹھے تھے۔ مایا کو آتا دیکھ کر وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیے مایا دیوی، वो इसी सपाट चेहरे के साथ टांग पर टांग चढ़ाए कुर्सी पर बैठ गई। चाय लीजिए, गोपाल ने एक प्याली उसके सामने की। ये वो वाहिद औरत थी जिसके लिए गोपाल ये सब कर सकता था। शुक्रिया, माया ने प्याली उठा ली। माया देवी, आपने जायदाद बिकवाने की बात की थी। ठाकुर रघुनाथ ने गला खनकार कर गुफ्तगू का आगाज किया। उनका कप उनके सामने अनछुआ रखा था। मैंने एक दो फरीकों से बात की है, इसमें कुछ अरसा लग जाएगा। वो खामोशी से उन्हें देखती रही, गरम चाय के घूंट हलक में उतारती रही। नहर वाली जमीन खरीदने में दो फरीक दिलचस्पी रखते हैं, मैं अभी उनसे मामला तय कर रहा हूँ। कागजात वगैरह भी तैयार हो रहे हैं, पटवारी से भी बात कर ली है। उसने कप खाली करके मेज पर रख दिया। अब वो बहुत तवज्जो से उन्हें देख रही थी। कुछ अदालती कार्रवाई मजीद होगी जिसके लिए आपको वापस बरतानिया जाने में कुछ वक्त लग सकता है, मगर मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा ताखिर ना हो और जैसे आप चाहती हैं वैसे ही हो। बाकी जब तक आपकी मर्जी, आप हवेली में रहें, गांव में घूमें फिरें, जमीन के मामलात में खुद देख लूंगा। आपको महज दस्तखत करने होंगे, क्या ख्याल है आपका? ये बेली राजपूता के भूत का क्या किस्सा है? सवाल उन दोनों की तवक्को के इस कदर बरक था कि ठाकुर रघुनाथ ने हैरत से उसे देखा। बेली राजपूता का भूत? वो क्या पूछ रहे थे और वो क्या पूछ रही थी? जी, बेली राजपूता का वो भूत जो रोज रात को मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान में घूमता फिरता है। मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान पे साया है जी, गोपाल ठाकुर साहब से पहले ही बोल उठा। कोई भटकती हुई आत्मा है, काफी अरसे से रात को गांव में भटकती फिरती है। अब तो गांव वालों ने उस तरफ जाना भी छोड़ दिया है। सफा नंबर 46। मगर मैंने सुना है कि बदर गाजान कहता है वो कोई क्रिमिनल है जो अपने किसी जुर्म का सबूत मिटाने के लिए भूत का ढोंग रचा रहा है। बदर गाजान तो खुद भी कोई मोटी गाली उसके लबों तक आते आते रुकी। शायद उसे माया की वहां मौजूदगी का एहसास हो गया था। वो साया है जी, आप मुस्लिमों की बातों पे मत जाएं। ये तो सामने की बात है कि वो साया है। इंटरेस्टिंग, माया गर्दन मोड़कर बागीचे को देखने लगी। बाहर का मौसम आ ही गया है, आपके बेली राजपूता में फूल बहुत प्यारे लगते हैं। वो दिलचस्पी से फूलों को सराहती कह रही थी। जायदाद के मामलात उसकी मामूली सी तवज्जो के भी हामिल नहीं थे। ठाकुर रघुनाथ गहरी सांस भरकर पीछे को हो गए। कभी कभी माया फर्नांडिस उन्हें इसी तरह बहुत बेइज्जत कर दिया करती थी। बाल बना दूं महारानी जी, रूपा उसे बालकनी में देखकर उस तरफ आ गई। वो बालकनी में कुर्सी डाले किताब पढ़ रही थी। रुख सामने को था, जहां सुनहरी गंदम की तैयार फसल के खेत दिखाई दे रहे थे। रूपा की आवाज पर उसने सर उठाया। वो हाथ में कंघा लिए मुंतजर खड़ी थी। हाँ, चोटी बना दो। उसने निगाहें किताब पे झुका दी और एक हाथ से ढीले से जूड़े की गिरा खोल दी। सारे बाल किसी आबशार की तरह कमर पे गिरते चले गए। रूपा बहुत नरमी से उसके सुनहरी बाल समेटने लगी। माया फिर से किताब में मुनहमिक हो गई। कल सवेरे बड़े मैदान में हमारा मेला लग रहा है। उसके बाल इकट्ठे करते रूपा को अचानक जैसे याद आया। अच्छा, वो किताब पढ़ती रही। नेजेबाजी का मुकाबला भी होगा। उसने सफा पलटाया। पूरे गांव को इस मुकाबले का इंतजार है साल भर से। बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा जी इस दफा। रूपा उसके बालों में कंघा ऊपर से नीचे ला रही थी। इस दफा माया ने जवाब भी नहीं दिया। छोटे ठाकुर गोपाल राज भी हिस्सा ले रहे हैं। अब तो इस मुकाबले की हार जीत पे बड़ी बड़ी शर्तें लग चुकी हैं। वो अब चोटी गूंद रही थी। गोपाल की जीत पे? गैर दिलचस्पी से महज रूपा का दिल रखने को माया ने पूछा। नहीं देवी जी, बदर गाजान की जीत पे। गोपाल तो इससे पिछले 4 बरस से हार रहे हैं। वो किताब बंद करके एक झटके से मुड़ी, चोटी रूपा के हाथ से फिसल गई। सारे बल खुलते चले गए। बदर गाजान गोपाल को हराता है? बेख्तियार वो उठ खड़ी हुई थी। हाँ जी, पिछले 4 वर्षों से। छोटे ठाकुर को बहुत गुस्सा है इस बात का। इस दफा उन्होंने पूरी तैयारी की है, भरी पंचायत में दावा भी किया है कि इस दफा वो बदर गाजान को ऐसी शिकस्त देंगे कि उसकी अगली 7 नस्लें याद रखेंगी। फिर बदर ने एक महफिल में कहा, इस दफा जो शिकस्त ठाकुर गोपाल राम को मिलेगी उसकी अगली क्या पिछली भी सारी नस्लों को खबर मिल जाएगी। रूपा कहकर खिलखिलाई, फिर एकदम सर झुकाकर खामोश हो गई। मैं जानती हूँ तुम्हारी हमदर्दी जहरा के चचाजात के साथ है। अच्छी बात है, मैं ये मुकाबला देखना चाहूंगी। कब है? कल सवेरे। रूपा शह पाकर जोश से उसे तफसीलात बता रही थी, मगर वो किसी और ही सोच में डूबी खड़ी रही। गांव के बड़े मैदान में रंगोबू का सैलाब उमड़ आया था। रिवायती अंदाज में सजा मेला और खुशी और जोश चेहरों पे लिए सजे संवरे देहाती, वो वाकई उनका सबसे हसीन त्योहार था। माया रूपति के साथ बसिद असरार मुकाबला देखने आ ही गई थी। ये नेजाबाजी क्या होती है रूपा? वो मुकाबले में दिलचस्पी लिए बगैर साथ मौजूद रूपवती से पूछने लगी। वो जी, रूपा हिचकिचाई, वो देखे ना, अभी आपको खुद ही समझ आ जाएगा। वो इसी पल एक तरफ से अलहड़ सी जहरा निकलकर उनके करीब आई। ठाकुराइन, आप भी आई मुकाबला देखने? वो उसे देखकर हैरान भी थी और खुश भी। माया ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। उसने आज भी बेदाग उजली सफेद साड़ी पहन रखी थी, आंखों के गिर्द बहुत गहरा काजल डाला था जैसे कल रात में चमकता सूरज। बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा जी आज, बड़े से मैदान में भागते घोड़ों को देखकर जाहरा कह रही थी। आज तो उसके चेहरे पर और ही रंग बिखरे थे। माया ने उसकी निगाहों के ताकुब में घोड़े बगाते, नेजों से मेखे उखाड़ते घुड़सवारों को देखा और फिर गहरी सांस भरी। ये तो टेंट पैगिंग है। रूपा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। आपको इस खेल का इल्म है जी? हाँ, मगर मेरी नैनी ने मुझे ये नहीं बताया था कि टेंट पैगिंग नेजाबाजी को कहते हैं। सामने दो घोड़े, एक सफेद और एक सिया भागते आ रहे थे। सिया घोड़ा गोपाल राज का था, वो पहचान गई थी। नेजाबाजी का ओरिजिन मुस्लिम फौजों की शब खून की टेक्निक थी। जब वो मूड में होती तो बहुत बोला करती थी। इस खेल में तो सिर्फ मेखे गाड़ी जाती हैं, पूरे पूरे खेमे नहीं लगाए जाते, मगर दर हकीकत शब खून में मुसलमान फौजें रात को दुश्मन के सो जाने पे अपने तेज तरीन घुड़सवार दुश्मन की मकीन गांव में भेजा करती थी, जो अपने नेजों की मदद से उनके खेमों की मेखे उखाड़ देते थे। फिर खेमों को इकट्ठा करके आग लगाती जाती थी और सोया हुआ दुश्मन। बोलते बोलते वो रुक गई। गोपाल के साथ वाला सफेद घोड़ा अभी उसके सामने से गुजर कर गया था। ये चेहरा, उसे दिलहोजी के जंगल में गिरा जख्मी याद आया। ये सफेद घोड़े पे कौन है? बदर है, मेरे चचा का बेटा। जहरा बहुत मुसर्रत से उसे देख रही थी। माया की निगाहें दूर तक सफेद घोड़े के पीछे गई थी। घुड़सवार बहुत महारत से उसे दौड़ाता अब मीखे उखाड़ता जा रहा था। फिर जब नेजेबाजी का मुकाबला खत्म हो गया और 5वें बरस भी ठाकुरों के लड़के को मुसलमानों के लड़के ने शिकस्त दे दी और तालियों और नारों का शोर कदरे थमा, तो कितनी ही देर बाद उसने सफेद घोड़े की लगाम थामे उस ऊंचे लंबे मकरूर दिखने वाले नेजेबाज को अपनी जानी बातें देखा। वो शायद जहरा को देखकर इधर आ गया था। इनके करीब आते ही उसके कदम सुस्त पड़ गए। वो हैरतज़दा सा माया को देख रहा था, फिर घोड़े की लगाम थामे आहिस्ता आहिस्ता चलता उन तक आया। आप मगरूर तने हुए नकोश धीमे पड़ गए थे। वो शायद उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। तुम सांप के कांटे से बच गए? माया मुस्कुराई, महजूस सी मुस्कुराहट। बहुत चुपके से दिलहोजी की डूबती शाम दोनों के आसपास उतर आई थी। आप इधर, तुमने मुझे पहचान लिया? वो इसकी हैरत से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मैं बेली राजपूता की मलका को कैसे भूल सकता हूँ? वो धीमा सा मुस्कुराया। शायद रूपा ठीक कहती थी, वो गांव का सबसे वजी मर्द था, भूलना भी नहीं चाहिए था। मगर आप इधर, वो छोटा सा गांव था और इसमें वाहिद गोरी लड़की ठाकुर शेखर राज की बेवा थी। बजाहिर वो जैसे कड़ियां मिला रहा था। आप शेखर की? हाँ, मैं माया फर्नांडिस हूँ और तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। शेखर राज अच्छा आदमी था, गांव के साथ मुखलिस था। उसकी मौत का अफसोस हुआ, उसने माया का आखिरी फिक्रा नजरअंदाज किया था। शुक्रिया, मगर क्या दूसरे ठाकुर मुखलिस नहीं जो तुमने आज गोपाल को पांचवी दफा हराया? शुक्रिया। वो बस हंस दिया, फिर सफेद घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा। ये एक वफादार जानवर है, उसने बहुत वफा निभाई है मेरे साथ। कभी राजपूतों की हवेली आओ, मैं तुम्हें गोपाल के ऐसे तीन घोड़े दिखाऊंगी। आप कभी मलिकों की हवेली आइए, मैं आपको अपना पूरा अस्तबल दिखाऊंगा। वो हंसती, मलकों की हवेली किस तरफ है? आपकी खादिमा आपको ले आएगी, मगर मैंने तो कहा कि मैं आऊंगी। बदर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। आप कोशिश कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। तुम इंतजार करना, मगर मैं ना वादा करती हूँ ना कोशिश करूंगी। एतमाद से उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर वो जाने के लिए पलटी। चलो रूपा। सुनिए, माया ने मुड़े बगैर महज गर्दन तिरछी करके अकब में देखा, मैं इंतजार करूंगा। जरूर करना। वापस जाते हुए उसने एक नजर जहरा के तारीख पड़ते चेहरे को देखा, जो कितनी ही देर से खामोश खड़ी थी। आज पहली दफा बदर ने गांव की सबसे सुंदर लड़की को यूं नजरअंदाज किया था। माया असर लिए बगैर आगे बढ़ गई, रूपवती उसके पीछे थी। वो घोड़े की लगाम हाथ में थामे उसे दूर जाते देखता रहा। दिलहोजी की डूबती शाम का फिसूं अभी तक बाकी था। चौधरी मंगल सिंह का ताल्लुक गांव के एक मौजिज घराने से था। वो जात के राजपूत थे, मगर इमारत के लिहाज से ठाकुरों से कहीं कम। बहरहाल गांव के मुतवस्सित तबके के जमींदारों में चौधरी मंगल सिंह को खास अहमियत हासिल थी। मंगल सिंह का पिछले 8 माह से एक सिख जमींदार से जायदाद का तनाजा चल रहा था। ये तनाजा बेरी के एक दरख्त की मिल्कियत से शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते जानी दुश्मनी तक पहुंच गया था। उस दरख्त के दूसरे दावेदार शोभा सिंह ने, जिसकी जमीन मंगल सिंह की जमीन के साथ मिली हुई थी, भरी पंचायत में मंगल सिंह को जान से मार देने की धमकी दी थी। 1939 में अंग्रेज के कानून की अमलदारी कमजोर होती जा रही थी। पै दर पे सियासी महाजों पे शिकस्त खाकर सरकार खासी कमजोर हो चुकी थी। डकैती और कत्ल की वारदातें आम सी बात बनती जा रही थी। एक महीने में जायदाद के तनाजे पे 2-4 कत्ल हो जाना तो अब मामूल बन चुका था। उस रात शोभा सिंह का इरादा इसी मामूल को दोहराने का था। मामला अब बेरी के दरख्त का नहीं रहा था, शोभा सिंह ने सुना था कि मंगल सिंह यार दोस्तों में बैठकर कहता है कि अगर शोभा सिंह ने दरख्त वाली जगह मेरे हवाले ना की तो मैं उसकी बहन को उठा लूंगा। शोभा सिंह की बहन निर्मलता जवान खूबसूरत औरत थी। जब बात निर्मलता पे आई तो शोभा सिंह की गैरत ने जोश मारा और उसने भरी पंचायत में दावा किया कि अगर मंगल सिंह बाज ना आया तो वो उसका खून कर देगा। मगर मंगल सिंह बाज ना आया और उस रात शोभा सिंह नहर के किनारे घात लगाकर मंगल सिंह की ताक में बैठ गया। उसे इल्म था कि मंगल सिंह आज अपने भाई के घर है और वहां महफिल जमी होगी, जिसे छोड़कर वो रात गए घर वापस लौटेगा। उसे ठिकाने लगाने का ये वक्त बेहतरीन था। रात गहरी हो गई तो मंगल सिंह अपने भाई के घर से निकला। पूरा गांव खामोशी और अंधेरे में डूबा था। घरों की बत्तियां गुल हो चुकी थी और गांव के मकीन बिस्तरों में दुबके बेखबर सो रहे थे। मंगल सिंह का घर ज्यादा दूर ना था, मगर रास्ते में खेत पड़ते थे और आगे नहर थी। नहर के एक तरफ कच्चा रास्ता था जो पुराने कब्रिस्तान से होकर दूसरे गांव जाता था, जबकि दूसरी जानिब मंगल सिंह के घर का रास्ता था। वो खामोशी से खेतों के दरमियान बनी कच्ची पगडंडी पे चल रहा था। सामने नहर थी और इस तरफ कच्चा रास्ता जिसके साथ साथ दरख्तों की बाड़ लगी थी। चलते चलते यूं ही मंगल सिंह ने सर उठाया तो एकदम उसे अजीब सा एहसास हुआ। वो वहीं अपने कदमों पे रुक गया। दरख्तों के झुंड के साथ साथ कोई दबे कदमों कच्चे रास्ते पर चल रहा था। मंगल सिंह शायद कभी तवज्जो ना देता, मगर उस शख्स का रुख पुराने कब्रिस्तान की जानिब था। अगर वो कोई दूसरे गांव जाने वाला मुसाफिर होता तो उसे किसी सवारी या घोड़े वगैरह पे होना चाहिए था, मगर वो पैदल चल रहा था। रात के इस पहर कोई शख्स क्यों पुराने कब्रिस्तान जाएगा? उसके जहन में गांव वालों की बातें गूंजने लगी। बेली राजपूता का भूत, एक चुगापोश जो रात को पुराने कब्रिस्तान के आसपास मंडलाता है। बाज लोगों का कहना था कि वो कोई भटकी हुई आत्मा है और रोज रात को किसी कब्र को फाड़ कर निकलती है और फिर सुबह होने से कबल दोबारा कोई कब्र खोद कर अंदर खुद को दफन कर लेती है। कब्रिस्तान में खुदाई के आसार थे, जिससे लोगों ने शुरू शुरू में यही कयास जाहिर किया और जैसे जैसे बात फैली गांव वालों ने रात तो क्या दिन में भी उधर जाना छोड़ दिया। वो चुगापोश कौन था, कहां से आया था और पुराने कब्रिस्तान में वो रोज रात को क्या करता था, ये कोई नहीं जानता था। चौधरी मंगल सिंह के जहन में इंसान का फितरी तजस्सुस बेदार हुआ। घर जाने का इरादा तर्क करके कच्चे रास्ते की जानिब बढ़ गया। उस रात चांद नहीं निकला था। तारों की रोशनी में मंगल सिंह को वो सिया हैवला सा नजर आ रहा था। उन दोनों के बीच फासला बहुत ज्यादा था। साया दरख्तों के झुंड के साथ साथ इधर उधर देखते एहतियात से चल रहा था। मंगल सिंह दबे कदमों के पीछे चल दिया। उसे इल्म नहीं था कि उसका ताकुब भी इसी तरह कुछ फासले से हो रहा है। तारीक साया पुराने कब्रिस्तान के करीब जाकर रुका, इधर उधर देखा और लकड़ी का फाटक धकेला। वो भारी चरचराहट के साथ खुलता चला गया। साया अंदर दाखिल हो गया। शायद अभी तक वो अपने ताकुब में आते मंगल सिंह से बेखबर था। मंगल सिंह फाटक के उस तरफ खड़ा चंद लम्हे सोचता रहा। कब्रिस्तान में उस वक्त हू का आलम था। दूर दूर तक फैली कब्रें और फितरी खौफ एक लम्हे को तो मंगल सिंह के दिल ने कहा कि लानत भेजो इस पे और भाग चलो, मगर दूसरे ही लम्हे उसने जी कड़ा करके उस चुगापोश को बेनकाब करने का तहैया कर लिया। दूर से उसको ठीक से तो नहीं देख सकता था, मगर एक बात का उसे चंद मिनटों में ही यकीन हो गया था कि वो साया कोई इंसान था, भूत नहीं। साया अब बरगद के घने बूढ़े दरख्त के नीचे पहुंच चुका था। उसके हाथ में कदाल थी और उसका इरादा जमीन खोदने का था। मंगल सिंह ने खुद को तसल्ली दी, वाह गुरु का नाम लिया और कब्रिस्तान में कदम रख दिए। साया अब जमीन में झुका, लकीर खींच रहा था। उसका सिया चोगा काफी खुला सा था और इसमें उसकी जसामत का अंदाजा नहीं होता था। सर पे चोगे की टोपी थी और इसकी मंगल सिंह की जानिब कमर थी। मंगल सिंह आहिस्ता आहिस्ता चलता चोगा पोश के सर पे पहुंच गया। आहट थी या कोई और एहसास, चोगा पोश ने बौखला कर पीछे देखा। टोपी उसके सर पे थी और तारों की रोशनी में उसका चेहरा वाजे था। मंगल सिंह को हैरत का शदीद झटका लगा। चोगा पोश ने एकदम कदाल छोड़ दी और भागकर दरख्त की ओट ली। एक लम्हे को तो मंगल सिंह को इसकी हरकत की वजह समझ में न आई। वो बामुश्किल ही इस शौक से निकल पा रहा था कि एकदम वो साया यूं गायब भी हो गया था। मंगल सिंह बेख्तियार दरख्त की जानिब लपका, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता किसी ने पीछे से कृपान का वार किया। पैर दर पे चंद वार करके हमलावर बाहर को भाग गया। ये यकीनी था कि हमलावर ने वो भूत नहीं देखा था। दबे कदमों वो साया दरख्त की ओट से निकला और करीब आकर मंगल सिंह का चेहरा देखा। वो चंद मिनट का मेहमान था, ये उसकी हालत से जाहिर था। माफ करना मुझे, तुम्हारी मौत का अफसोस हुआ है। अगर तुम्हें कोई बचाने आ जाए तो उसे कहना कि आइंदा जो बेली राजपूता के भूत का पीछा करेगा उसका अंजाम यही होगा। चंद लम्हे बाद साया कच्चे रास्ते में गुम हो चुका था। मंगल सिंह अभी तक पड़ा कराह रहा था। माया देवी, माया देवी, रूपवती भागती हुई बदहवास सी उसके कमरे तक आई। वो सिंघार में इसके सामने बैठी बालों की चोटी गूंद रही थी। शायद गांव में माया के पास करने को और कोई काम नहीं था। क्या हो गया रूपा? चोटी के बल डालते हुए उसने तनकीदी निगाहों से खुद को आईने में देखा। माया देवी, वो भागने के बायस रूपवती की सांस चढ़ गई थी। वो चौधरी हरि सिंह का बेटा, वो क्या? उसने हाथ बालों में रोक कर गर्दन उठाकर उसे देखा। वो चौधरी हरि सिंह के बेटे को भूत ने कत्ल कर दिया है। उसकी लाश पुराने कब्रिस्तान से मिली है। क्या? वो झटके से उठ खड़ी हुई। भूत ने कत्ल कर दिया? मगर कब, कैसे? वो हैरान परेशान से खड़ी थी। रात को किसी वक्त जी। माय गुडनेस, वो हैरत से कुछ बोल नहीं पा रही थी। इट्स टेरिबल, मैं तो समझी थी वो कोई चोर उचक्का होगा, मगर वो भटकी हुई आत्मा है जी। अब तो आ गया ना आपको यकीन? मगर रूपा, कत्ल कैसे हुआ है? क्या गोली मारी है? पता नहीं जी, पुलिस का कहना है कि किसी तेज धार आले से वार किया गया है। अभी लाश का वो नहीं हुआ, वो जैसे लफ्ज याद करने लगी। पोस्टमार्टम? माया ने फौरन कहा। रूपवती सर हिलाने लगी। मगर इसका क्या सबूत है, या तुम लोग कैसे कह रहे हो कि कत्ल भूत ने ही किया है? बदर गाजान ने खुद सुना है, मरते समय चौधरी मंगल सिंह ने भूत का ही जिक्र किया है। बदर गाजान, वो बुरी तरह चौंकी। जी, मलिकों का बेटा बदर गाजान। वो इधर क्या कर रहा था? वो तेजी से बोली। वो साथ वाले गांव से वापस आ रहा था अपने घोड़े पे। पुराने कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हुए उसने मंगल सिंह की चीखों की आवाज सुनी। वो पहुंचा तो मंगल सिंह का आखिरी सांस था, और आखिरी सांस में मंगल सिंह ने पूरे सफे का बयान भी दे दिया। पता नहीं जी, मैंने तो मुंशी करीम दीन से सुना है कि मंगल सिंह ने बदर गाजान को भूत का बताया है। बदर किसी से जिक्र कर रहा था। माया शशुपंज में मुबतला खड़ी उसे देखती रही, फिर सर झटक कर खिड़की के सामने आ खड़ी हुई। अजीब सी बात है, आधी रात को कब्रिस्तान में कत्ल हो जाता है जो बकौल तुम लोगों के कोई सो कॉल्ड भूत करता है, और फिर इतना इत्तेफाक के ऐन मौके पर बदर गाजान पहुंच जाता है और मकतूल से नज़े बयान भी ले लेता है। वो मशकूक सी नफी में सर हिला रही थी। ओहो, कहीं कुछ गलत जरूर है। کیا غلط ہے مہارانی جی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ سوال یہ ہے روپا کہ اتنی رات کو بدر غازان قبرستان میں کیا کر رہا تھا؟ چھوٹا ملک دوسرے گاؤں سے آ رہا تھا، روپوتی نے دہرایا۔ پتا نہیں روپا، مگر بار بار میرے ذہن میں ایک شخص ابھر رہا ہے۔ وہ کھڑکی کے باہر نگاہیں جمائے سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بند شیشے کے اس پار گاؤں کی زندگی رواں دواں تھی۔ پارٹ 5 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔